ಕೃಷ್ಣ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ತಮ್ಮ ಲಂಬೆ ಸಫರ್ಗೆ ಬಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಜ್ ಕೋರ್ ದೂಸರಿ ಚೀಸ್ ಸುನೆಂಗೇ ಜಾನೆಂಗೇ ಬಹುತ್ ಚರ್ಚಾ ಶುರು ಕರೆಂಗೆ ಜೋ ಹಮಾರೆ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯಾಸ್ ಹೇ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಹೇ ಉನ್ಕಿ ಜೀವನ ಗಾಥಾ ಮಹಾಜನ್ ಗಾಥಾ ಜಿಸೆ ಕಹತೆ ಯಾ ಜೀವನ ಗಾಥಾ ಕೋ ಸುನೆಂಗೇ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೇ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹಮೇ ಉನ್ಕೆ ಜೀವನ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪೋ ಕೋ ಸಮಜ್ನೆ ಮೇ ಸಹಾಯತಾ ಹೋಗಿ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪೋ ಕೋ ಸಮಜೇಂಗೇ ತೋ ಹಮೇ ಭೀ ಹಮಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಮೇ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾ ವರ್ಧನ್ ಹೋಗಾ ಯಾ ಫಿರ್ ಆಗೇ ಬಢನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಮ್ ಪ್ರೇರಿತ ಹೋಂಗೆ ತೋ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮೇ ಶ್ರೀಲ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ವೈಷ್ಣವ್ ತೇನೇರ ಸ್ಮರಣ ಹೈ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶನ್ ಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರ್ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಪಹಲೆ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಔರ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಕರೆ ವೈಷ್ಣವ ಕಾ ತೋ ಇನ್ ತೀನೋ ಕೆ ಸ್ಮರಣ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಉನ್ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ಆನೆ ವಾಲಿ ಜೊ ಸಾರಿ ಬಾಧಾಯೇ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ವಿನಾಶ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ತೀನೇರ ಸ್ಮರಣೆ ಹೈ ವಾಂಛಿತ ಪುರಾಣ ಕ್ಯೋ ತೀನೋ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಸೆ ಇತ್ನಿ ಶಕ್ತಿ ಹೈ ಇನ್ ವೈಷ್ಣವ ಮೇ ಕಿ ಐಸೆ ಮಹಾನ್ ವೈಷ್ಣವ ಕಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಕಾ ಯಾ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಸಾರೆ ವಿಘ್ನ ತೋ ಖತಮ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಕಿ ಸಾರಿ ಜೊ ಬಾಧಾ ಹೈ ವೋ ಖತಮ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಕೇವಲ ಇನ್ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಸೆ ಹಾಂ ಕ್ಯೋಂಕಿ ವೈಷ್ಣವ ಉನ್ಕಿ ಜೀವನ ಗಾಥಾ ಜೈಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೊ ಕಥಾ ಹೈ ವೋ ಅಮೃತಮಯ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಸುನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಸೆ ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೇಶು ಅಭದ್ರೇಶು ಕಿ ಹೃದಯ ಕೆ ಸಾರಿ ಜೊ ಅಭದ್ರ ಹೈ ವೋ ಪೂರಿ ತರ ಸೆ ಖತಮ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಐಸಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೊ ಕಥಾ ಹೈ ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ಕೆ ಜೊ ಭಕ್ತ ಹೋತೆ ಹೈ ಉನ್ಕಿ ಭೀ ಜೊ ಕಥಾ ಹೈ ವೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕಥಾ ಸೆ ಅಭಿನ್ನ ಹೈ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೋಯ್ ಅಕೇಲೆ ಐಸಿ ಲೀಲಾ ನೀ ಕರ್ ಸಕತೆ ಬಿನಾ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಸೆ ತೋ ಕೋಯ್ ಐಸಿ ಕಥಾ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಅಕೇಲೆ ಹೈ ಬಿನಾ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಕೋಯ್ ಐಸಿ ಕಥಾ ನೀ ಮಿಲೇಗಿ ತೋ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಜಿತ್ನಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೈ ಉತ್ನಿ ಹೀ ಉನ್ಕೆ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಜೊ ಗೌರವ ಗಾಥಾ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಜೊ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರ ಹೈ ವೋ ಭೀ ಉತ್ನಾ ಹೀ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಲಿಯೇ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಹತೆ ಕಿ ಯೇ ವೈಷ್ಣವ ಐಸೆ ಹೈ ಇತ್ನೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಭಕ್ತ ಕಿ ದರ್ಶನೆ ಪವಿತ್ರ ಕರ ಯೇ ತುಮಾರ ಗುಣ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಭಕ್ತ ತೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಸುನೆಂಗೆ ಯಾ ಉನ್ಸೆ ಸುನೆಂಗೆ ತೋ ಹಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅನುರಾಗ ವಿಕಸಿತ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ಯಾ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಉನ್ನತಿ ಕರೆಂಗೆ ಲೇಕಿನ್ ಕೇವಲ ಐಸೆ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ದೇಖನೆ ಮಾತ್ರ ಸೆ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಬನ್ ಜಾತೆ ಪವಿತ್ರ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಗಂಗಾರ ಪರಶ ಹೈಲ ಪಚ್ಛಾತೆ ಪಾವನ್ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಗಂಗಾ ಮೇ ಸ್ನಾನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಆಪ್ ಪವಿತ್ರ ಹೋತೆ ಹೋ ಲೇಕಿನ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ದೇಖನೆ ಮಾತ್ರ ಸೆ ಆಪ್ ಪವಿತ್ರ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೋ ತೋ ಆಪ್ ಸಮಜ್ ಸಕತೆ ಹೈ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಜೊ ಭಕ್ತ ಹೈ ಕಿತನೆ ಮಹಾನ್ ಹೈ ಔರ್ ಕಿತನೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಭೀ ಐಸೆ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತಲಬ್ ಉನ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ದಾಸ್ ಬನ್ತೆ ಹೈ ಯಾ ಉನ್ಕೆ ಅಧೀನ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಜೊ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಭಕ್ತ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಮಾಯಾವಾದಿ ಭಗವಾನ್ ಮೇ ಲೀನ್ ಹೋನಾ ಚಾಹತೆ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇ ಲೀನ್ ಹೋನಾ ಚಾಹತೆ ಲೇಕಿನ್ ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ಸೆ ಬಡ್ಕರ್ ಬನ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ಭೀ ನೀ ಬನ್ನಾ ಚಾಹತೆ ವೋ ತೋ ಕಹತೆ ಹಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬನ್ನಾ ಹೈ ಆಪ್ ಭಗವಾನ್ ಹೋ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಹೋ ಯಾ ಭಗವಾನ್ ಬನ್ ಜಾಂಗಾ ಪದಾರ್ಥ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಜಾಂಗ ತೋ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಸೆ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಬನ್ನೆ ಕಿ ಕಾಮನಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಹತೆ ಹಮಾರಿ ಕೋಯಿ ರುಚಿ ನೀ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಬನ್ನೆ ಮೇ ಹಮ್ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಭೀ ಊಪರ್ ಬನ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ भगवान के ऊपर कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो भगवान को भी बांध डालते हैं, बांध देते हैं। हाँ, जैसे अभी कार्तिक आ रहा है तो कैसे बांधते हैं? कृष्ण को कहा जाता है, कृष्ण क्या है? कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान है, और राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, और लॉर्ड चैतन्य है प्रेम पुरुषोत्तम। तो कृष्ण क्या करते हैं, बचपन से ही उनका एक ही काम होता है, क्या करना? चोरी करना। तो कृष्ण बस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, परम भगवान है, लेकिन परम चोर भी है वो। हाँ, तो इसलिए एक आचार्य ने उनके ऊपर एक अष्टकम ही लिख दिया, हाँ, चोराग्रगण्य अष्टकम, कि चोरों में जो अग्रगण्य है, चोरों में जो सर्वश्रेष्ठ है, चोरी करने में सबसे आगे है, चोरी करने में जो सबसे एक्सपर्ट है, वो कृष्ण है। तो इसके ऊपर पूरा अष्टकम ही लिख दिया, और क्या क्या चोरी करते हैं वो भी उन्होंने वर्णन कर दिया। हाँ, गोपी वसन हर, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं यशोमती नंदन में, गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं, और माखन तस्कर, माखन की तस्करी करते हैं, चोरी करते हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है, जो चोरी करने में एक्सपर्ट हैं, वो सब चीजें, दुकुल हरणम, गोपियों के कपड़े हरण करते हैं, ऐसी काफी चीजें वो हरण करते हैं, भक्तों के मन को हरण कर लेते हैं। तो जो चोर है, हाँ, जो चोर चोरी करता है तो वो दंड का भी भागी होता है। हाँ, चोर ऐसा है कि जिसको दंड नहीं मिला, तो चोरी करता है और वो पकड़ा जाए तो उसको कहाँ भेजा जाता है? जेल। तो ये जो चोर है कृष्ण, ये चोरी करते हैं तो उनके भक्त उनको पकड़ते हैं, जैसे मदर यशोदा ने पकड़ा और फिर जेल में डालते हैं। तो कृष्ण के लिए जेल क्या है कि भगवान के जो भक्त हैं, अपना हृदय रूपी जेल है उसमें डाल देते हैं कृष्ण को, स्टे फॉर एवर। अभी आपको निकलने का कोई बेल नहीं होगी, कोई कोर्ट में जज के द्वारा सुनाई नहीं होगी, कुछ नहीं, परमानेंट आपको एक अंदर एक कोठड़ी में अंदर डाला जाएगा, आजीवन कारावास। तो इस प्रकार ये जो चोर कृष्ण है उनको इस प्रकार से सजा देते हैं जो भक्त है, हाँ, और भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से भी क्या है, शक्तिशाली है, महान है, इवन, हाँ, भगवान को कहा जाता है कि कृष्ण को दुर्जय है, भगवान को प्राप्त करना इजी नहीं है। हाँ, तो लेकिन भगवान के भक्त क्या करते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो भक्त हैं, हाँ, जो कृष्ण के प्रति क्यों वश में कर पाते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति उनको अपने भगवान के प्रति उनके हृदय में क्या है, प्रेम है, स्नेह है। हाँ, उस रस्सी से बांध देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे हमारी परंपरा में जो भगवान के हैं, कई सारे अनन्य भक्त हुए हैं, जिनका उद्देश्य क्या रहा कि जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की सेवा की और उस सेवा के माध्यम से भगवान की ग्लोरीज को पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया। तो इस प्रकार आज से हम चर्चा करेंगे कई सारे ऐसे वैष्णव जिनके जीवन को हम सुनेंगे कुछ दिनों तक और जानेंगे, और उनके द्वारा क्या होगा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज कहते हैं, जहाँ सब स्मरणे पाय चैतन्य चरण, जहाँ सब स्मरणे हय वांछित पुराण। क्या ऐसे भक्तों का स्मरण करने मात्र से आपको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होगी? आप सोचो कितने शक्तिशाली हैं। हाँ, जहाँ सब स्मरणे पाय चैतन्य चरण, इनका स्मरण करने मात्र से, हाँ, तो यही आकांक्षा होती है एक्चुअली डिवोटीज की। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद हमेशा कहते थे, ये बात हमेशा याद रखो, इफ यू लव मी देन लव माय डॉग, कृष्ण कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, आप किसी लड़की से प्रेम करना चाहते हो तो पहले उसके कुत्ते से प्रेम करना पड़ेगा, हाँ, तो फिर उससे आपका अच्छा संबंध बनेगा। तो उसी प्रकार भगवान है तो भगवान के तक हमारी पहुंच तभी संभव हो सकती है यदि हम उनके भक्तों से प्रेम करते हैं, और भक्तों के द्वारा ही हम भगवान से प्रेम करते हैं, हाँ, या हो पाता है। तो ऐसे ही जो हमारे वैष्णवाज हैं, हम रोज प्रणाम मंत्र गाते हैं, वांछा कल्पतरु भेष कृपा सिंधु बेवच। तो वैष्णव कैसे हैं? कल्पतरु के समान है। तो कल्पतरु क्या होता है? डिजायर ट्री, ऐसा पेड़, ऐसा वृक्ष जिसके नीचे आप बैठोगे और जो भी इच्छा करोगे, हाँ, वो क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी उसकी। कृपा सिंधु बेवच, तो भगवान के भक्त कृपा के सागर होते हैं, इतने दयालु होते हैं बद्ध जीवों के प्रति। और पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, अपतितों को पावन करते हैं, ऐसे वैष्णवों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो वांछा कल्पतरु, तो सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वैष्णव, भौतिक नहीं, कौन से? आध्यात्मिक डिजायर्स, आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करते वैष्णवाज हैं। तो ऐसे वैष्णवों का आश्रय लेना चाहिए, और उनके बारे में हम सुनते हैं तो नेचुरली उनके हृदय में जितना भगवान के प्रति प्रेम है, उसी का कुछ लवलेश हमारे हृदय में प्रविष्ट होने लगता है। और ऐसे वैष्णवों के बारे में सुनते हैं तो ये क्वालिटी हमारे अंदर आने लगता है, वो है डिटर्मिनेशन। तो भक्तों के बारे में सुने या भक्तों के गुणों की चर्चा करें तो ये करने मात्र से ये जो डिटर्मिनेशन है आध्यात्मिक जीवन में बने रहने का या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का, वो बढ़ता ही जाता है। हाँ, तो भक्त दृढ़ होता है। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं ना गीता में, यतंतच दृढ़व्रता सततम कीर्तयन्तो माम यतंतच दृढ़व्रता नमस्तेंच माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। मेरा जो भक्त उपासना करता है सततम कीर्तयन्तो, हर समय कीर्तन करता है, कौन सा कीर्तन?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त हर समय इस कीर्तन में लगा रहता है। तो ऐसे ही कई सारे भक्त हैं, उनमें से जिस परंपरा में हम हैं, ऐसे नहीं कि प्रभुपाद ने कोई नई परंपरा शुरू कर दी। कई बार लोगों को लगता है इस्कॉन कुछ अपना ही नया कुछ ये लोग प्रेजेंट कर रहे पूरे वर्ल्ड के सामने, लेकिन ये क्या है? साइंस है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस आंदोलन 5000 साल पूर्व शुरू हुआ है, हाँ, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने, इतना पुराना है कि ये आंदोलन, इसकी शिक्षा भगवान ने करोड़ों साल पहले सूर्य देवता विवस्वान को दी थी। देखिए प्रभुपाद कैसे समझाते हैं, हाँ, ये आंदोलन इतना पुराना है, आपको लगता होगा कि ये आंदोलन अभी का है। तो इस प्रकार ये जो आंदोलन है, ये जो शिक्षाएं हैं, ये भगवान ने प्रदान की है, जिन शिक्षाओं का श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व के सामने प्रकाशन या वितरित कर रहे हैं। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि किसी को भी आध्यात्मिक रूप से उन्नति करनी है या भगवत प्राप्ति करनी है तो उसको चार जो ऑथोराइज संप्रदाय हैं, उन ऑथोराइज परंपरा से ही, अधिकृत जो परंपरा है या जो चार संप्रदाय है उनमें ही व्यक्ति को दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वो चार संप्रदाय कौन से हैं? एक है स्त्री संप्रदाय जिनके आचार्य हैं रामानुजाचार्य, एक है मध्व, एक है ब्रह्म संप्रदाय जिनके आचार्य हैं मध्वाचार्य। तो इस्कॉन इस संप्रदाय में आता है। ब्रह्मा जी हमारे फाउंडर आचार्य हैं, फाउंडर मतलब मेन आचार्य हैं, जो भगवान ने उनको ये शिक्षा दी थी। और ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्म संप्रदाय को स्थापना करते हैं, और ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हैं श्रील श्रीपाद मध्वाचार्य। और तीसरा जो संप्रदाय है, ये बात भगवान कृष्ण स्वयं पद्म पुराण में कहते हैं, और जो तीसरा संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं विष्णु स्वामी, जो लॉर्ड शंकर शिव जी से शुरू होता है, और चौथा है श्री संप्रदाय कुमार संप्रदाय, जिनके आचार्य हैं निंबार्काचार्य। इस प्रकार से तो वो चार कुमारों के द्वारा उस वो जो परंपरा है वो शुरू होती है। तो इसी प्रकार से आज हम हमारी संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे, और उनकी अचिंत्य और अद्भुत ऐसे कार्यकलाप हैं उनको भी सुनेंगे साथ साथ। तो इस परंपरा में भगवान, अब भागवतम में पढ़ते हैं सेकंड और थर्ड कैंटो में, कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी से मिलते हैं, और इससे पहले हमने सुना था कि तप करते और फिर भगवान उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को शिक्षा देते हैं अपनी बांसुरी के द्वारा, उनको नॉलेज प्रदान करते हैं, और भागवतम के पहले स्कंद में भी आता है तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, कि ब्रह्मा के हृदय में ये ज्ञान आदि कवि एक नाम है उनका ब्रह्मा जी का। हाँ, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरया। तो आदि कवि जो ब्रह्मा है उनको भगवान ये ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशमान करते हैं, और ब्रह्मा उसी ज्ञान को आगे अपने जो पुत्र और अपने शिष्य, क्या नाम था उनका, नारद जी को देते हैं, और नारद जी भी उसी ज्ञान को आगे चलकर कृष्ण द्वापायन व्यास, तो कई कई अलग अलग युगों में अलग अलग व्यास होते हैं व्यास देव। तो इस युग में जो व्यास देव है उनका नाम है कृष्ण द्वापायन व्यास। तो इस व्यास इन व्यास देव को जो नारद जी है वो ज्ञान प्रदान करते हैं, और व्यास देव उसी नॉलेज को आगे चलकर मध्वाचार्य को प्रदान करते हैं। तो उनके बाद भी और परंपरा आती है, लेकिन मध्वाचार्य स्वयं ना ब्रह्म व्यास देव से मिले थे, हाँ, और उन्होंने व्यास देव से काफी जो शिक्षाएं हैं वो उन्होंने स्वीकार किए थे। व्यासदेव के बाद मध्वाचार्य। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो उनके वहां गए थे उड़ीसा नहीं साउथ इंडिया जब गए तो उड़ुपी गए थे। उड़ुपी ते कृष्ण देखी हैला उन्मादी, कि उड़ुपी में कृष्ण को देखकर महाप्रभु नाचने लगे, मध्वाचार्य के जो परम प्रिय जो विग्रह हैं। तो इस प्रकार से आज हम थोड़ा उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार श्रीपाद जो मध्वाचार्य हैं वो प्रकट होते हैं, और किस प्रकार वो अपने सिद्धांत की स्थापना करते हैं, और जो भक्ति है उसका प्रचार करते हैं। तो मध्वाचार्य का जो जीवन चरित्र है वो कई ग्रंथों में पाया जाता है, लेकिन उनके एक शिष्य थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिनका नाम था मध्व विजय, और इसकी चर्चा श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में की है चैतन्य चरितामृत में। और मध्व विजय एक पूर्ण जो ग्रंथ है वो इनके जीवन चरित्र पर आधारित है, और बहुत काफ़ी विस्तार से मध्व विजय में मध्वाचार्य के लीलाओं का वर्णन करते हैं उनके जो शिष्य हैं। हाँ, क्योंकि ये मध्वाचार्य कोई सामान्य पर्सनालिटी नहीं थे, मध्वाचार्य क्या है स्वयं वायु के इनकार्नेशन है, और वायु के इनकार्नेशन है, अवतार है, और उसके साथ साथ वो पिछले अपने जीवन में भीम जी के रूप में आए थे, भीम, और फिर हनुमान के रूप में भी, हनुमान का भी वो इनकार्नेशन एक प्रकार से, और इस समय वही वो मध्वाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो मध्वाचार्य एक प्रोफाउंड आचार्य हैं, हाँ, जिन्होंने कभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया, हाँ, बचपन से ही वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे पूरे जीवन भर और कृष्ण भावना का उन्होंने प्रचार किया। और वर्णन आता है कि दक्षिण भारत में एक कपल को क्या कहते हैं, एक जोड़ा था, पति पत्नी थे, उनमें से एक कहा दंपति, दंपति सही शब्द है। तो एक दंपति थे, पजा का क्षेत्र नाम का एक गांव था वहाँ उडुपी के पास, ये आंध्र प्रदेश में आता है शायद, आंध्र में आता है। तो वह पजा का क्षेत्र नाम का एक गांव था जहाँ शिवाली फैमिली में जो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था मध्य गेह भट्ट और डेली क्या करते थे, ये पूजा करते थे, उनके गांव से 12 किलोमीटर दूर आकर उडुपी में आते थे। उडुपी बहुत फेमस स्थान है, तो उडुपी में आते थे और वहाँ अनंतेश्वर का मंदिर था और लॉर्ड शिवा का भी एक टेम्पल था, तो वहाँ वो डेली पूजा करते थे भगवान की। मध्य गया भट्टा, बाद में वर्णन करेंगे उनके जीवन का भी, ध्यान नहीं है सबका। अब जल्दी बाहर जाइए, बाहर जल्दी बाहर। तो मध्य आंध्र प्रदेश में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था मध्य गया भट्ट। तो मध्य गए भट्ट एक यंग ब्रह्मचारी था और वो रहते थे, उनका गांव था पजा का क्षेत्र जो उडुपी सिटी से 12 किलोमीटर दूर था। तो ये क्या करते थे, डेली शिवजी की पूजा करने के लिए अनंतेश्वर टेम्पल है, काफी बड़ा मंदिर है वहाँ उडुपी में, फेमस मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। तो ये जाते थे और डेली पूजा करते थे। और उस समय क्या था कि वैष्णव सिद्धांत की जो चर्चा है या वैष्णव दर्शन का जो प्रचार है वो भारत वर्ष में नहीं था, क्योंकि बुद्ध के बाद श्रीपाद शंकराचार्य आए और उन्होंने पूरे भारत को ढक दिया मायावाद सिद्धांत से, और सब जगह इस मायावाद सिद्धांत के अनुसार लोग आध्यात्मिक कार्य में लगे थे। तो जब क्या होता है, फिर स्वर्ग लोक में या देवताओं के लोक में सारे देवता इकट्ठा हो जाते हैं और देवता इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी, अभी तो बहुत कठिन समय आया है भारतवर्ष में कि यहाँ केवल दो जो दर्शन है उनका प्रचार बहुत तीव्रता से है, एक है बौद्ध फिलोसफी और दूसरा है मायावाद का जो दर्शन है, इसके द्वारा सारे लोगों की जो बुद्धि है वो ढक गई है, तो इसलिए आप कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ले जाते सबको क्षीरदक्षायी विष्णु के पास जो ब्रह्मा लोक में ही है उस तट के समंदर के किनारे, और ब्रह्मा विष्णु से प्रार्थना करते हैं सारे देवताओं के साथ कि आप मेरा जो संप्रदाय है एक प्रकार से अभी ये हो गया है, खंडित हो गया है, तो इसको रीएस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, पुनः स्थापन करने की आवश्यकता है मेरे इस संप्रदाय को, ब्रह्म संप्रदाय को, तो आप इसके लिए कुछ करिए, इस परंपरा को शुरू करिए। तो भगवान क्या करते हैं, उस समय कई सारे देवता थे तो उसमें से एक देखते वायु देवता, बड़े स्मार्ट और तेज और इंटेलिजेंट थे, तो वायु देवता को कहते कि हे वायुदेव, तुम एक कृष्ण भावना भावी जो प्रचारक हैं, हाँ जो प्रीचर हैं, भक्ति योग का प्रीचर बनके आप इस जगत में जाओ और कृष्ण भावना की स्थापना करो या वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करो। तो वायुदेव क्या करते हैं, सोचते हैं कि मुझे अभी जाना है भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार। तो तब कुछ ही दिनों के बाद ये जो ब्राह्मण मध्य गए बट उडुपी में जाता था अनंतेश्वर की पूजा करने के लिए, तो एक दिन देखा, आपने साउथ के मंदिर देखे होंगे, बहुत उनका जो गोपुरम है बहुत ऊंचा होता है और अंदर अंदर टेंपल होता है, जाकर अंदर अंदर घुसो जैसे वृंदावन, गोपुरम मतलब वो डोम, और फिर बाहर एक खंबा होता है साउथ इंडियन टेम्पल्स में होता है, आपने देखा, वृंदावन में नहीं देखा होगा, श्री रंगम टेम्पल है वृंदावन में, रंगजी टेम्पल रंगनाथ, तो वहाँ एक खंबा है। तो ऐसे खंबे साउथ में मंदिरों के बाहर होते हैं और उनके ऊपर फ्लैग होता है। तो उस समय क्या होता है, एक दिन अचानक एक पागल व्यक्ति उस खंबे के ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद और हर कोई उस व्यक्ति को देखने लगता है कि इतनी ऊंचाई पर वो चढ़ रहा है और वो अनाउंसमेंट करता है ऊपर से कि जल्द ही वायु अपीयर होने वाले है एक महान आचार्य के रूप में और मायावाद दर्शन को खत्म करने वाले हैं और भगवान जो वैष्णविज्म है उसकी स्थापना करने वाले हैं। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति अनाउंस करता है कि भक्ति योग की वो स्थापना करेंगे और एक महान आचार्य आएंगे और जिनका उद्देश्य यही होगा कि वो मायावाद, मेनली जो शंकराचार्य का जो दर्शन है उसको स्मैश कर देंगे। स्मैश को क्या कहते हैं, खंडन करेंगे, विनष्ट तो नहीं करेंगे लेकिन खंडन करेंगे उसका पूरी तरह से और वैष्णव दर्शन की स्थापना करेंगे। तो उसके बाद ये जो मध्यगेय भट्ट है उनकी भी मैरिज होता है, वो भी एक युवती की तलाश में थे। तो वेदवती, वेदवती नाम की एक जो यंग लेडी थी उनसे मध्यगेय भट्ट मैरिज करते हैं और दोनों एक साथ ही रहते हैं पजा का क्षेत्र अपने गांव में। और कई दिनों से वो चाह रहे थे कि हमें एक अच्छा ये चाहिए, पुत्र चाहिए, तो इसलिए वो उपासना और व्रत करने लगते हैं। कैसा व्रत, जैसा भागवतम में इन्होंने कश्यप और आदिति ने किया था। आदिति मीन्स जो देवताओं की माता है और दीति मीन्स जो दैत्यों की माता है, एक ही फादर है देवताओं के और आसुरों के, कौन है, कश्यप, और उनकी दो पत्नियां थी दीति और आदिति, दोनों बहनें। एक बहन से सारे आसुर निकले, और पहले आसुर आए हिरण्याक्ष, उसका भाई हिरण्यकशिपु और सारी परंपरा। जो आदिति है उनसे देवता इंद्र वामन देव ये सारे। इस प्रकार से उस समय आदिति ने पयोव्रत रखा था, मतलब दूध पीकर भगवान की उपासना करना। तो एक व्रत का वर्णन भागवत में काफी विस्तार से है। तो ये जो वेदवती थी उन्होंने भी वैसा ही व्रत रखा जो भागवतम में एक्सप्लेन किया था। और किस लिए, कि वामन देव के समान एक अच्छा पुत्र हमें प्राप्त हो। तो ये दोनों मध्यगेय भट्ट और वेदवती 12 साल के लिए अपने गांव 12 किलोमीटर जाते थे, वहां उड़ुपी जाते थे और वहां जाकर पूजा करते थे और इनको डेली भगवान की सेवा करते थे बिना किसी रुकावट के। ऐसे कई साल और उनके अंदर ना लस्ट ना ग्रीड इस सब चीजों से मुक्त होकर वो कृष्ण की सेवा करते थे वहाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो वेदवती है वो वायु देवता उनके घर में शरण लेते हैं और फिर वायु देवता इस बालक के रूप में प्रकट होते हैं मध्वाचार्य के रूप में उनके गर्भ से। और जैसे ये प्रकट होते हैं तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं और बहुत लंबी चौड़ी प्रेडिक्शन को क्या कहते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, कई सारे जात कर्म करते हैं। उनको घी सोने के चम्मच में घी डाल के पिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हेल्थ अच्छी होती है और बुद्धि बड़ी शार्प होती है। और फिर उनको तुलसी खिलाते हैं बचपन में जन्म लेने के बाद, तो उससे डिवोशन भगवान के प्रति जागृत होती है। और मध्वाचार्य को हनी खिलाते हैं बचपन में जन्म लेते हैं, तो हनी क्यों, क्योंकि एपेटाइट भूख लगती है हनी से अच्छे से। इस प्रकार से कई सारे ऐसे उनके छोटे छोटे कार्य किए और एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि ये जो बालक है पहले भीम के रूप में आया था और उससे पहले हनुमान के रूप में आया था, और ये वायु देवता है स्वयं, वायु के इनकार्नेशन है, वायु देवता है। तो अपीयर हुए थे 1238 में, मतलब 1238 को क्या कहेंगे, 1238 में ये अपीयर हुए थे। जब मध्यगेय भट्ट ने अपने इस बालक को देखा तो इनका नाम उन्होंने रखा वासुदेव, हाँ, इस बालक का क्या नाम रखा, इनके कई नाम हुए हैं, 8-10 नाम चेंज हो गए इनके। सबसे आखिरी नाम पड़ा मध्वाचार्य। सबसे पहला नाम था वासुदेव, क्योंकि कृष्ण के समान वो सुंदर दिखते थे काफी बचपन में ही, उनके पिता ने देखकर ही कहा कि ये वासुदेव है। तो फिर ये जो बालक ने जन्म लिया तो उनके माता पिता ने सोचा कि अभी इसको आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो हम इनको उडुपी ले जाएंगे अनंतेश्वर के मंदिर में, भगवान के चरणों में उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो एक दिन एक दो व्यक्तियों को साथ लेके ये माता पिता वासुदेव को लेके जा रहे थे, गए और काफ़ी सारी पूजाज और सेवाज और आरती और फेस्टिवल्स हुए उडुपी में। और उसके बाद जब ये गए तो बीच में एक जंगल पड़ता है, तो जंगल से जाते समय तो ठीक गए, लेकिन जब आ रहे थे वो मध्वाचार्य को लेकर, उनकी मदर गोद में वासुदेव को लेकर, तो बहुत ही उस जंगल में कई सारे ऐसे भूत, भूत क्या कहते हैं, हाँ घोस्ट, भूत निवास करते थे, उसमें से एक था ब्रह्म राक्षस। तो ऐसे जो भूत थे और उनके साथ 2-3 लोग और थे, तो भूत क्या करता है, उनके माता पिता के साथ जो व्यक्ति थे उनके सर पे बैठ जाता है, और साथ वाले सारे व्यक्ति ब्लड वॉमिटिंग करने लगते हैं, तो डर जाते हैं सारे लोग, अभी क्या किया जाए। तो फिर उसी समय जिस व्यक्ति के अंदर वो भूत गया था, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और मैं तभी इस योनि से मुक्त हो सकता हूँ जब इस बालक के चरणों की रज मुझे मिल जाए, हाँ तब मैं इस योनि से मुक्त हो सकता हूँ। तो आप सोच सकते कितनी शक्तिशाली है चरण धूलि भगवान के भक्तों की। तो बचपन से ही अपनी चरण धूलि देकर सबका उद्धार करने लगे मध्वाचार्य। तो फिर उनकी माँ क्या करते, डरते हुए उस जिस व्यक्ति के अंदर भूत सवार था, इसका जो अंगूठा या जो चरण है उसके सर में रख देती हैं, तो तुरंत वो जो भूत है उसके बॉडी से चला जाता है और बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। तो हाँ, चलना भी नहीं शुरू किया था, गोद में थे वो, हाँ ऐसे नहीं कि धूल की आवश्यकता होती है, हाँ ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटल धूलि है उनके चरणों में। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य की ये यूनिकनेस है, और मध्वाचार्य इतने आगे चलकर हम देखेंगे कि इतने एक्सपर्ट आचार्य थे कि हर एक फील्ड में ऑलराउंडर थे वो। ऑलराउंडर का मतलब वो इतने अच्छे प्रचारक थे और बॉडी से भी बड़े स्ट्रांग थे। आज तक के जितने आचार्य हुए हैं उनमें शारीरिक जो शक्तिशाली आचार्य है वो मध्वाचार्य है। हाँ, बॉडीली इतने स्ट्रांग थे, अब देखेंगे अभी आगे उनका प्रसाद की क्वांटिटी क्या थी। तो मध्वाचार्य जो आचार्य हैं, जो इतने एक्सपर्ट प्रीचर थे कि हर प्रकार से उनका उद्देश्य था कि कैसे ये व्यक्ति भक्त बन जाएगा। ये विद्वान है तो इनके पास विद्वत्ता थी, शास्त्रों का नॉलेज था, इतना अद्भुत ज्ञान था, वो विद्वत्ता के द्वारा हराएंगे। या वो कंपटीशन करना चाहता है किसी भी फील्ड में, उससे द्वारा हराएंगे। और कई सारे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया था कुश्ती करके, ये गुरु थे। तो कोई शरणागत नहीं होता थे, बड़े बड़े पहलवान वो कहते थे आओ मैं आपके साथ कुश्ती खेलता हूँ, तो कुश्ती करने लगते थे उनके साथ और उसको हरा के अपना शिष्य बना लेते थे, उसको दीक्षा दे देते और फिर वो हरि नाम लेता था।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो वसुदेव छोटे बालक थे तो माता पिता चले जाते थे खेती के सेवा में, तो इनकी थोड़ी बड़ी बहन थी तो वो उनकी देखभाल करती थी। एक दिन क्या हुआ, ये छोटा सा वासुदेव रोते ही जा रहा है, इतना रोते जा रहा है कि वो रुक ही नहीं रहा था। उनकी सिस्टर चुप करा रही थी लेकिन चुप नहीं होता था। तो उनके वहाँ बैल था, घर में एक बैल था, और वहाँ ना एक बोरा भर के बैल के लिए जो खाद्य रखते हैं वो रखा था। तो ये इनकी सिस्टर कहती है अभी कैसे इसको रुकाओ, तो उठाती है अपने घर से और बैल का जो खाद्य रखा होता है बोरा भर के चना वगैरह ना, उसके सामने बिठा देती है। छोटा सा बालक, चलना भी नहीं आता इतना, और वो बिठा के चले जाते हैं बाहर माँ को लाने के लिए। जो गाय के लिए वो खाद्य होता है, बल्कि 40 किलो था वो जो भी फूड था, तो ये बालक बैठता है और पूरा के पूरा खत्म कर जाता है। और फिर उनकी ये उनका पहला अन्न प्राशन संस्कार है। मतलब बचपन में होता ना कई संस्कार होते हैं, हम जन्म लेने से पहले गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है, जन्म लेने से पहले माता पिता गर्भ धारण करवाते हैं माँ के गर्भ में पिताजी, तो गर्भदान संस्कार, तो ऐसे कई संस्कार होते हैं पूरे जीवन में हमारे, अंतिम है मृत्यु का जो अंतिम संस्कार, तो ये इनका पहला। तो उसमें आता है एक अन्न प्राशन संस्कार कि अन्न खिलाते पहली बार बालक को, तो इनका ये पहली बार इन्होंने ऐसा अद्भुत अन्न प्राशन संस्कार इनका हुआ था कि इन्होंने जो गाय के लिए जो खाद्य था वो सारा 40 किलो का बोरा खा डाला एक एक घंटे में बैठ के, वहाँ छोटे से बालक थे। तो उनकी माँ आई, कहाँ है मेरा बेटा, तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये छोटा सा बालक इसने इतनी चीजें कैसे खा ली। तो वो समझने लगे ये कोई सामान्य मेरा जो बेटा नहीं है, तो थोड़ा बड़ा हो गया ये वासुदेव और एक साल का ही हुआ होगा, एक डेढ़ साल का। तो कभी कभी घर से बाहर चला जाता था, खेलता था आसपास। तो एक दिन उस गांव में एक बहुत डेंजर बैल था, बहुत हट्टा कट्टा बड़ा सा बैल। ये वासुदेव उस जाते हैं, सुबह सुबह निकल जाता है बाहर, और उनके माता पिता देखते शाम होने आए ही मेरा वासुदेव कहाँ चला गया, वो मिल ही नहीं रहा था कितना भी उन्होंने देखा। तो वासुदेव देखा कि शाम के समय, और कई लोगों को लगा कि वासुदेव को ढूंढो, लगाया उन्होंने सेवा में। तो ये वासुदेव क्या कर रहा था कि सुबह चला गया घर से बाहर और किसी के वो शेड में चला गया, काऊ शेड में जहाँ वो बड़ा बैल था, गया और उस खुला हुआ था, बल्कि सारे लोग डरते थे, ये गया और उसकी पूंछ पकड़ ली उन्होंने। हाँ, कृष्ण लीला में ऐसे आता है, कृष्ण और बलराम छोटे बालक थे, तो नंदा और यशोदा से दूर होकर वो गौशाला में जाते थे और जहाँ गोबर वगैरह पड़ा होता था, ये जाके उनकी पूछ पकड़ के बछड़ों की, और बछड़ों की आपने पूछ नहीं पकड़ी होगी, आपने आपका अनुभव नहीं होगा, मुझे अनुभव है, हम भी पकड़ लेते थे, ऐसा भागते हैं बछड़े। तो कृष्ण बलराम छोटे ही हैं, वो बिल्कुल उनके पीछे ऐसे लटका कर घसीटते हुए जा रहे, पूरे गोबर में और मूत्र में ना, जो गौ का वो है गोअर्क है, हाँ उसमें वो घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य भी उसके लंबे बैल का उन्होंने वो पकड़ा और लटक गए उसको, और वो बैल दौड़ रहा है और ये उसके पीछे भाग रहे पूरा सुबह से शाम तक। शाम को देखा कि अरे मेरा बेटा वहां से कहाँ से जा रहा है बैल के पीछे, तो उन्होंने मदर ने देखा कि वो बैल की पूंछ पकड़ा हुआ है सुबह से, तो उसको पकड़ के कैसे तो छोड़ के ले आते रात को। तो इस प्रकार के मध्वाचार्य समझ सकते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी जीव नहीं थे, बचपन से कुछ ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य करते थे। और एक कार्य है उनकी, ऐसी कई लीलाएं हैं, मैं कुछ ही लीलाएं आपको जस्ट शॉर्टकट में सुनाऊंगा। उनके पिताजी जो मध्यगेय भट्ट है, उनके ऊपर काफी कर्जा हुआ था, उन्होंने कुछ बुलक कार्ड खरीदा था और काफी चीजें ना। तो एक दिन जो जमींदार है वो आता है और उनके घर के दरवाजे में बैठ जाता है कि आप पैसे नहीं दोगे तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। तो दरवाजे पर बैठता है, तो ये इनको वासुदेव को पता नहीं कि ये व्यक्ति क्यों बैठा है यहाँ। तो ये वासुदेव आते हैं, कहते पिता, पिताजी आपने कुछ अभी तक प्रसाद बनाया नहीं, मुझे भूख लग रही है। तो कहते नहीं देखो ये अभी तक ये बैठा है ना जो जमींदार। तो इनको जैसे पता चलता है, वो जमींदार को कहते इधर आओ, हाँ उनको ले जाते हैं अपने घर के पीछे, चलो मेरे साथ, कर्जा पैसा चाहिए ना उनको। तो अपने घर के पीछे ले जाते हैं और वहाँ इमली का पेड़ होता है घर के पीछे, और इमली का पेड़ होता है और उसको पेड़ के कुछ सीड्स और पत्ते तोड़ते हैं वो, और ऐसे पकड़ के उसके हाथ में डालते हैं, हाँ वहाँ से निकालते हैं और उनको दे देते हैं उनके बैग में। तो वो सारे पत्ते या जो सीड्स है इमली की वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं गोल्ड कॉइन्स में, हाँ गोल्ड कॉइन क्या कहते हैं, सोने के सिक्कों में वो चेंज हो जाती है, और उनको दे देता है। और वो जो जमींदार जो आया था लक्ष्मी लेने के लिए, तो वो लेता है और वो मध्य के भट्ट का ये करता है, आभार प्रकट करता है कि धन्यवाद आपके बेटे ने मुझे जो धन है वापस कर दिया। और ये छोटे ही थे तो ये बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं इनके जो फादर हैं, हाँ कि कैसे ये मेरा जो बेटा है या ऐसे अद्भुत कार्य कर पाता है। और लेकिन इनकी खासियत क्या थी कि बचपन से ही कृष्ण के प्रति बहुत अनुराग था। एक दिन सारे माता पिता के साथ वो एक सेरेमनी में चले गए, जैसे फैमिली गैदरिंग होता है मैरिज में या किसी चीज़ में, तो सब लोग अपना प्रजल्पा कर रहे हैं, टॉक्स में लगे हुए हैं, काव 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 ने जैसे मेंढक चिल्लाता है, राव राव, सब गृहस्थ की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें करने में सब लगे हुए हैं, बहुत बोलते जा रहे हैं। तो ये मध्वाचार्य वासुदेव बच्चा ही था, उसको रहा नहीं गया कि ये क्या फालतू टॉक कर रहे, अपना जीवन गवा रहे। उधर से उन्होंने लगा मुझे निकलना चाहिए, किसी को नहीं बताया और धीरे से उस घर से बाहर निकल कर 10 किलोमीटर दूरी पर उड़ीपी चले गए वो अकेले। और हर एक मंदिर में गए, वहाँ पूजा की, वहाँ चांटिंग किया, वहाँ सेवा की, और फिर हर और कई सारे मंदिरों में एक दिन में चले गए। वो बहुत तेजी से ट्रैवल करते थे, हाँ इतने छोटे से बच्चे थे। तो यहाँ देखा कि उनके जो माता पिता ढूंढ रहे फंक्शन के बाद कि कहाँ गए मेरे जो बेटे हैं, तो वो मिले ही नहीं। तो फिर मध्य गया भट्ट उडुपी में चले जाते, कोई कहता है कि उडुपी में एक छोटा सा बालक है जो बड़े तीव्रता से मंदिरों के दर्शन करता है, तो पता चला कि ये मेरा ही बेटा है। और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अकेले हो? तो मध्य वासुदेव कहते कि मैं अकेले नहीं हूँ, भक्त अकेला नहीं होता, अपने पिता को कहते हैं कि भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद भी कहते थे, प्रभुपाद जब चले गए तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे कभी नहीं महसूस हुआ कि मैं अकेला हूँ, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो मेरे साथ होते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे काफ़ी उनकी छोटे छोटे पास टाइम से मध्वाचार्य के। तो एक दिन उनके पिताजी भागवत का व्याख्यान दे रहे थे कई लोगों के लिए रूम में, तो वो बताते जा रहे थे और भागवतम के एक कैंटो में वो वर्णन करते कि अलग अलग प्रकार के ट्रीज होती हैं, पेड़ होते हैं, तो हर एक पेड़ की वो व्याख्या करने लगते हैं। लेकिन एक पेड़ था जिसका नाम था लिकुचा, संस्कृत में लिकुचा, लिकुचा या जो भी, तो लेकिन इस नाम को वो छोड़ देते हैं और बाकी सारे पेड़ के नामों की व्याख्या करते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर पर या आगे के श्लोक में, तो मध्वाचार्य कहते हैं कि आप प्रिटेंडर हो, वो भी सुन रहे थे ना कथा, अपने पिता को सबके सामने कहते हो कि आप क्या हो, प्रिटेंडर। प्रिटेंडर को क्या कहते हैं? आप मिथ्याचारी हो, अपने पिता को ही कहते हो नीचे से। हाँ, आप भाष्य दे रहे हो भागवतम पर लेकिन आप स्किप कर रहे हो, आपको पता नहीं उसका जो अर्थ है लिकुचा। फिर वो नीचे से कहते हैं लिकुचा मीन्स नीम का जो वृक्ष है। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और बहुत शक्तिशाली थे। ये स्कूल जाने की इनको आवश्यकता नहीं होती थी, ये स्कूल जाते थे लेकिन कभी सुनते नहीं थे मास्टर का, क्योंकि इतना ज्ञान था उनके पास, वो पढ़ाने से पहले उनको पता चलता था, सारे सारे शास्त्र वैसे ही पारंगत थे। तो ये जाते थे, क्लास शुरू होती थी, निकल देते थे बाहर, जाके प्रसाद खाते थे कहा भी, और फिर अंदर आते थे क्लास खत्म होने से पहले। हाँ, तो इस प्रकार से वो अपना बचपन का समय गवाते हैं। और एक दिन वो एक दुर्गा मंदिर के बाहर खेल रहे होते हैं वासुदेव, और खेलते खेलते एक जो सर्प है मणिमान, महाभारत में एक आसुर मणिमान के रूप में प्रकट होता है, सांप के रूप में यहाँ, तो उसके लिए वो मध्वाचार्य को डसने के लिए आता है। बहुत विशाल सर्प था, कई सारे उसके मुख थे, लेकिन ये मध्वाचार्य बालक ही थे तो ये क्या करते, अपना जो अंगूठा है पाँव का वो अंगूठा लेते और उस सांप के सर के ऊपर रखते हैं और ऐसा मार डालते हैं उसको अंगूठे से। आज भी वो स्थान है जहाँ उन्होंने उस सांप को मारा था, खड्डा हुआ है उस स्थान में। आज भी जो उस मध्व संप्रदाय के जो फॉलोअर्स हैं उस स्थान में पूजा करते हैं। तो जैसे इनकी माँ को पता चला कि इस प्रकार से मेरा बेटा एक सांप के द्वारा प्रभावित हुआ था वहाँ दूर से ही, बल्कि 4-5 किलोमीटर दूरी है उनके घर में और स्थान में। तो उनकी माँ चिल्लाती है कि हे वासुदेव वासुदेव जल्दी आ जाओ। तो ये वासुदेव पहले हनुमान और भीम रह चुके हैं। जैसे उनकी माँ की आवाज उन्होंने सुनी, उनको पता नहीं कैसे सुनाई दी, तो ये क्या करते हैं, वहां से जंप लगाते हैं, 4 किलोमीटर दूरी से जंप लगाते हैं पहाड़ से और सीधा अपने आंगन में घर के माँ के सामने। और वहां भी एक गड्ढा हुआ है और आज भी सारे वैष्णव जाते हुए स्थान में, उनके जन्म स्थान में, और वहां वो स्थान है जहां जंप लगा के उनका चरण पड़े थे दोनों, वहां बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है चरणों का। तो वहां सारे वैष्णव उन चरण का जो स्थान है उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जो आचार्य थे हमारे, जो मध्वाचार्य हैं, और हर समय वो लीडर रहते थे हर एक कार्य में, सेवा में, साधना में, पढ़ाई में, सब चीज़ों में हमेशा फर्स्ट रहते थे जो मध्वाचार्य है। तो ऐसे मध्वाचार्य अपने गुरु के पास पढ़ते थे और उनसे शास्त्रों की शिक्षा लेते थे और साथ साथ वो उपनिषदों का और वेदों का अध्ययन करते थे बचपन में ही। तो ये जो 108 उपनिषदाद है उनमें से उनका जो फेवरेट उपनिषद है उसका नाम है ऐतरीय उपनिषद। उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ा तो उस समय इसी पर ही वो लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। तो ऐतरीय उपनिषद पर जब वो प्रवचन दे रहे थे, इस पर देते देते उन्होंने अपना शरीर से वो लुप्त हो गए थे। तो इनका ये फेवरेट उपनिषद था और इन्होंने जब गुरुकुल में अपनी पढ़ाई की बचपन में, तो उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की। हाँ, और उस गुरुकुल जब छोड़ रहे थे तो वो 10 या 11 साल के थे, हाँ, पढ़ाई जब की। तो उस समय उन्होंने अपने पिता को कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और प्रचार करना चाहता हूँ भगवत भक्ति का। कितने साल के थे? 10 या 11 साल के। तो उन्होंने अपने पिता को कहा कि मुझे संन्यास लेना है। तो उनके पिताजी डर गए, संन्यास लेना मतलब इस्कॉन में फुल टाइम होना, हाँ, जैसे माता पिता हमारे चिल्लाते हैं वैसे ही इस वासुदेव के माता पिता भी चिल्लाने लगे। और इन्होंने क्या किया, इनको जैसे पता चला उडुपी में एक ब्रह्म संप्रदाय है उसमें एक आचार्य है, क्योंकि उस समय क्या होता था, मायावाद सिद्धांत इतना फैल चुका था कि जो ये 4 संप्रदाय है वो किसी कोने में छुप के भक्ति करते थे लोग, मतलब किसी को पता नहीं चले ऐसे स्थान में वैष्णवाद बैठते थे और अपना भजन करते थे, बहुत रेयर था, क्योंकि मायावाद ही सब जगह था। आध्यात्मिक जीवन मतलब मायावाद जो सिद्धांत या दर्शन है उसको ही स्वीकार करना। तो ये जो वासुदेव अपने गांव से उडुपी जाते और ढूंढते हैं तो उनको एक सन्यासी मिलते हैं जिनका नाम था अच्युत प्रेक्ष, और जिनसे वो भगवत भक्ति का शिक्षा लेते हैं और साथ साथ बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और जो अच्युत प्रेक्ष थे उनको भी भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे पास एक ऐसा शिष्य भेजूंगा। उनकी भी इच्छा थी, मायावाद सिद्धांत का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है ये देखकर जो अच्युत प्रेक्ष वैष्णव सन्यासी थे उनको बहुत दुख होता था, हाँ, कि भगवान के भक्ति का लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान को निराकार मान रहे हैं। इस प्रकार से वो लोग सन्यासी जो थे वैष्णव सन्यासी वो दुखी थे और वो भगवान से प्रार्थना करते थे। तो भगवान ने कहा कि कुछ ही समय में मैं तुम्हारे पास एक ऐसा शिष्य भेजूंगा। एक शिष्य क्या करेगा, इस मायावाद दर्शन का पूरी तरह से खंडन करेगा और ये जो भगवत भक्ति का जो आंदोलन है उसकी वो स्थापना करेगा। तो ये वासुदेव या मध्वाचार्य बचपन में 10 साल के थे तो रेगुलर जाते थे टेम्पल, घर आते थे और रेगुलर वहाँ के भक्तों का संग लेते थे। और फिर एक दिन उन्होंने अपने पिता को कहा कि मुझे संन्यास लेना है और मुझे शादी वगैरह नहीं करनी है। तो उनके पिता तो ढूंढ रहे थे कोई लड़की, बचपन पहले तो कितने जल्दी शादी होती थी, मतलब दोनों बच्चे पालने में हैं, हाँ, क्या कहते हैं,
पालना,
हाँ, मतलब जन्म लिया और 2-4 साल के हैं तभी उनका मैरिज हो जाता था, और बड़े हो जाते थे तब उनको पता चलता था कि वो ये मेरी वाइफ है और ये मेरे हस्बैंड हैं। तो मध्वाचार्य का भी मैरिज उनके जो फादर है वो 5 साल या कुछ ऐसे अवस्था में करना चाह रहे थे, लेकिन मध्वाचार्य ने कहा था कि नहीं, हाँ मुझे मैरिज नहीं करना है, हाँ मुझे तो एक भगवान की सेवा में अपना जीवन दे देना है। और फिर अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, 10 साल के थे, चले जाते हैं। और भाई वो जो सन्यासी थे ब्रह्म संप्रदाय के, उनके पास जाकर रहने लगते हैं। और उनके पिता कई बार आते हैं, और जब भी इनके पिता आते हैं ये क्या करते थे, सन्यास का वेश धारण करते थे, कोपिन धारण करते थे, हाथ में एक डंडा और सन्यास का वो ऊपर का वस्त्र। और उनके पिताजी गिड़गिड़ाते थे कि बेटा वापस चलो, अभी नहीं हमारी कौन देखभाल करेगा, ये वही डायलॉग जो आजकल हमारे माता पिता मारते हैं। हाँ तो ये कहते हैं कि मैं तब तक सन्यास नहीं लूँगा जब तक आप परमिशन नहीं देंगे। तो मध्वाचार्य कहते हैं कि आप परमिशन देंगे तभी मैं सन्यास लूँगा। तो लेकिन माता पिता परमिशन नहीं दे रहे थे एक्चुअली। तो इन्होंने कहा कि फिर आपको और एक बेटा उत्पन्न होगा माँ को का आपके गर्भ से, और जब वो उत्पन्न होगा तब मैं सन्यास लूँगा, उससे पहले नहीं लूँगा सन्यास। लेकिन घर में नहीं रहते थे, मंदिर में ही रहते थे वो। तो फिर कुछ महीनों के बाद उनका एक दूसरा भाई भी प्रकट हो गया उनकी माँ के गर्भ से, हाँ मध्वाचार्य का दूसरा ब्रदर छोटा सा। तब पिताजी के पास गए और माँ के पास कहा कि अभी तो आपकी आपकी देखभाल करने के लिए दूसरा बेटा है, हाँ अभी तो मुझे परमिशन दे दो सन्यास लेने के लिए। तो पिताजी कहते नहीं। तो फिर मध्वाचार्य डांटते हैं माता पिता को, आप मुझे परमिशन नहीं दोगे तो कभी भी आप मेरा मुख नहीं देख सकते, मैं कभी भी नहीं आऊँगा मिलने, हाँ और आप मुझे परमिशन देते हो तो फिर ठीक है, कभी तो आपको मिलूँगा मैं। तो इस प्रकार से उनको जबरदस्ती वो देना पड़ता है, परमिशन देना पड़ता है। और फिर ये जाते हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु से संन्यास ग्रहण करते हैं। तो उनका नाम मिलता है पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ, फिर दूसरा उनका नाम है, संन्यास नाम था पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। और पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ और ये पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ फिर पूरे प्रचार के कार्य में लगते हैं। और रोज उनके जो गुरु हैं बाकी शिष्यों में से इनके ऊपर बड़ा ध्यान रखते थे, पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के ऊपर अच्युत प्रेक्ष थे उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम, जो ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। और गुरु का भी इतना स्नेह मध्वाचार्य से था, क्योंकि मध्वाचार्य बहुत शास्त्रों में बहुत विद्वान थे। ये छोटे से 11 साल के थे, सन्यास डंडा लेके पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और बड़ी बड़े लेक्चर्स देते थे, और उडुपी के हजारों लोग आके बैठते थे और ओपनली शंकराचार्य की फिलोसफी को काटते रहते थे। और फिर इसी प्रकार से उन्होंने अपने फॉलोअर्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए। सारे मायावादी डरते थे इनसे बचपन से ही, हाँ 12 साल के थे जब ये प्रवचन देते थे बैठ के पेड़ों के नीचे। तो एक दिन उनके पिताजी आए देखने कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, अभी संन्यास तो ले लिया, देखा कि बेटा इतना शक्तिशाली है और इतना वंडरफुली वो प्रीचिंग कर रहा है, शास्त्रों को प्रेजेंट कर रहा है हजारों लोगों के सामने, और उस क्राउड में उनके पिता भी खड़े होकर अपने बेटे को देखते रहते थे कि यही वो मेरा वासुदेव है जो प्रचार कर रहा है शास्त्रों का और मायावाद का खंडन कर रहा है। तो उनके पिता को भी बहुत आनंद होता है कि हाँ बेटा हो तो ऐसा जो कृष्ण भावना का प्रचार करे। तो इस प्रकार से उनके पिता भी भक्ति में कार्य में लगते हैं। और एक दिन, क्योंकि इनके गुरु बहुत प्रेम करते थे इनसे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ से, क्योंकि सबसे सारे शिष्यों में से बहुत सॉलिड शिष्य थे, आज्ञाकारी शिष्य थे और बहुत बुद्धिमान थे। और उनके गुरु ने रियलाइज़ किया कि भगवान ने जो कहा था कि एक ऐसा शिष्य भेजूंगा, तो वो यही शिष्य हैं जो भगवान भेजना चाह रहे थे। तो फिर पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने एक दिन अपने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुदेव मैं गंगा स्नान करने जाना चाहता हूँ, क्योंकि साउथ इंडिया में तो गंगा है नहीं, गंगा यहाँ से बहती है यूपी बिहार और बंगाल चली जाती है ना, बंगाल में सागर को मिलती है, बंगाल के उपसागर को, हाँ सागर को जाकर मिलती है, गंगा सागर है। तो साउथ में तो है नहीं, तो उनको गुरु जी को कहा कि एक दिन मैं भी गंगा स्नान करने की इच्छा हो रही है, मैं गंगा स्नान के लिए जाना चाहता हूँ। तो उनको गुरुदेव सेपरेशन, उनको छोड़ना वो नहीं चाहते थे अच्युत प्रेक्षा, क्योंकि उनके विरह में नहीं जी सकते थे। तो उन्होंने कहा और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे अनंतेश्वर, कि आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि ये जो पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ है वो मुझसे दूर ना जाए। स्नान करने के लिए बंगाल या फिर हरिद्वार आना पड़ता, तो उन्होंने कहा दूर ना चला जाए। तो भगवान क्या करते हैं, उसी समय उस मंदिर के सामने, उनके मठ के सामने ही एक सरोवर था जिसका नाम था अनंत तीर्थ सरोवर। तो उसी में गंगा प्रकट हो जाती है और वहाँ पानी आता है, गंगा का पूरा सरोवर भर जाता है गंगा के पानी से, और मध्वाचार्य फिर वहाँ स्नान करते हैं। तो वो नहीं आते यहाँ क्योंकि उनके गुरु नहीं चाहते थे, तो भगवान अरेंज करते इस प्रकार से ना जल। तब से आज भी उडुपी जाते हैं डिवोटीज, हाँ, तो देख सकते हैं उस सरोवर को जिसका नाम अभी मध्व सरोवर है, क्योंकि मध्वाचार्य के लिए वो जो गंगा है उनके वहाँ प्रकट हुए थे। और इस प्रकार से जो मध्वाचार्य है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और मेनली मध्वाचार्य क्या करते हैं कि प्रचार करते हैं। और मध्वाचार्य के पास कई सारे ऐसे मायावादी आचार्यास, मायावादी गुरुज, बौद्धों के गुरु आते थे मध्वाचार्य को हराने के लिए। ग्रुप ग्रुप से ग्रुप आता था, बैठता था, तीन तीन दिन का आर्ग्यूमेंट होता था, डिबेट होता था मध्वाचार्य के साथ। और मध्वाचार्य अकेले इनफ थे, हाँ, अकेले रहते थे और हर एक को भगा देते थे। तो ऐसी कई घटना आती है कि कई लोगों को मध्वाचार्य ने अपने शास्त्रों, उनके विद्वत्ता के आधार पर उन्होंने कई लोगों को हराया था। और एक तो ऐसी घटना आती है कि जब वो डिबेट कर रहे थे तो शाम हो गई, वो लोग चले गए, और फिर दूसरे दिन शुरू होने वाली थी डिबेट। तो लोग देखने गए तो जो लोग आए थे डिबेट करने के लिए वो रात को ही अपना सामान पैक करके भाग के चले गए थे। हाँ, इतना मध्वाचार्य से डरते थे सारे लोग, स्पेशली उनकी विद्वत्ता के लिए। हाँ, शास्त्रों के पंडित थे। आप देखेंगे षड संदर्भ जो जीव गोस्वामी ने लिखे हैं, हाँ, सुना होगा अपने नाम षड संदर्भ। जीव गोस्वामी ने भागवतम के ऊपर 6 संदर्भ ग्रंथ लिखे हैं जिसमें अलग अलग 6 टॉपिक्स की चर्चा की है जीव गोस्वामी ने। कृति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, इस प्रकार से भागवतम के एक एक सब्जेक्ट को जीव गोस्वामी ने विस्तार से वर्णन किया है। तो उन्होंने मध्वाचार्य को भी कोट किया है उन संदर्भाज में। और मध्वाचार्य ने कई ऐसे शास्त्रों से कुछ श्लोकास कोट किए हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि मध्वाचार्य 200 ग्रंथों से श्लोका कोट करते थे, बल्कि वो ग्रंथ अवेलेबल ही नहीं, अभी गोस्वामी के समय ही अवेलेबल नहीं थे वो जो ग्रंथ हैं। हाँ, लेकिन कहते मध्वाचार्य जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने कोट किया है, इसलिए मैं भी उनको कोट कर रहा हूँ। तो इतना हमारे जो गौड़िया आचार्याज हैं उनको इतना ये था मध्वाचार्य के प्रति फेथ और उनकी शिक्षाओं के प्रति। बल्कि एक दिन हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे चारों संप्रदाय के ऊपर, तो उसमें डिफरेंस है मध्वाचार्य की शिक्षाओं में और हमारा जो गौड़िया शिक्षा है उनमें कई सारा डिफरेंस है। वो काफ़ी पॉइंट्स है, मैं कभी चर्चा करूँगा। तो उनमें से एक है कि वो कहते हैं इटरनल नरक होता है, कुछ लिविंग एंटिटीज इटरनल नरक में ही रहती है, जो वापस नहीं जा सकती बैक टू गॉडहेड। तो ऐसी कई सिद्धांत हैं जो मेल खाते हैं और मेल नहीं खाते मध्वाचार्य। मध्वाचार्य
ये तो भगवदगीता में भगवान भी कहते हैं कि कुछ ऐसे ही असुर हैं जिनको मैं असुर योनि में रहता हूं।
नहीं, वो तो द्वेषी की बात करते हैं, द्वेषी। तो ये एक ऐसी सिद्धांत है, ये चर्चा का विषय नहीं है, इसमें ऐसे एग्जाम्पल बताया है। तो आगे चलकर वो चार संप्रदाय को मैं आपको प्रॉपर टीचिंग समझा दूंगा। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य अपना प्रचार करते थे। और प्रभुपाद कहते थे कि 2 भागवत होते हैं। 2 भागवत कौन से हैं? एक है
भागवत,
भक्त भागवत और दूसरा है बुक भागवत, है ना। तो बुक भागवत का जो आचरण है वो भक्त भागवत हाँ करता है, इसलिए भक्तों के लिए ये जो दोनों भागवत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक है श्रीमद् भागवतम और एक है जो भक्त है हाँ वो भागवत। तो मध्वाचार्य श्रीमद् भागवतम और कई वैदिक ग्रंथों का प्रचार करते थे और हजारों हजारों लोगों का उन्होंने जीवन और हृदय चेंज कर दिया था, तो इसलिए उन आचार्यों ने उनको टाइटल दिया भगवत पाद मध्वाचार्य को, भगवत पाद टाइटल मध्वाचार्य को दिया था। हमारे महाराज को भी है ना भगवत पाद, तो मध्वाचार्य को ये उपाधि टाइटल दिया था क्योंकि इतने प्रोफाउंड और शक्तिशाली आचार्य थे, भागवतम के प्रचार और शिक्षाओं को जन सामान्य में प्रीच करते थे। और फिर मध्वाचार्य के जो गुरु थे उन्होंने सोचा कि अभी इस संप्रदाय की जो मेन जो शिक्षा है या फिर नेक्स्ट आचार्य किसे बनाया जाए, तो उनके गुरु आनंद तीर्थ इनको आचार्य बनाते हैं पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ को, तो फिर उनका नाम चेंज कर देते हैं, उनका नाम वो रखते हैं आनंद तीर्थ रखते हैं। आप देखिए कितने टाइटल्स और नाम उनके चेंज हो रहे हैं सेवा और प्रचार के आधार पर। इस प्रकार से ये कई लोगों को हराते हैं और ट्रैवल करते थे हर समय उड़ुपी के आसपास के स्थानों में और डिबेट करते थे, मायादियों को हराते थे और कृष्ण भावना का प्रचार करते थे। तो ऐसे ही जब वो ट्रैवल करते थे तो एक दिन वो कर्नाटक में आते हैं और मैंगलोर के पास एक गांव है विष्णु मंगलम, वहाँ आते हैं और वहाँ विष्णु के मंदिर में कुछ समय अपना बिताते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था वो स्थान। हमेशा वो विष्णु टेम्पल में जाते थे, वहाँ के विष्णु मंगलम में समय निकाल कर अपना सारा शेड्यूल चेंज करके। तो एक जो गृहस्थ व्यक्ति है उनको हमेशा अप्रोच करता था प्रसाद के लिए, हाँ। तो एक दिन ये गृहस्थ व्यक्ति अप्रोच करता है और उनके लिए 200 केले लेके आता है, बड़े बड़े लंबे केले, बल्कि सामान्य व्यक्ति 3 केले खाकर ही उसका पेट भर जाता था। तो मध्वाचार्य को 300 केले ऑफर करता है तो मध्वाचार्य बैठ जाते हैं और मध्वाचार्य के लिए पानी के घड़े आते थे पीने के लिए, इतने बड़े बड़े 10-10, 20-20 घड़े पानी पी जाते थे, इतने बड़े, और 200 केले एक साथ बैठकर खाते हो। तो सारे जो डिवोटीज है हाँ हाउस होल्डर्स वो आश्चर्य करते थे, हाँ, क्योंकि ये पिछले कौन रह चुके हैं, भीम है, तो कभी कभी भीम के आवेश में आ जाते थे। उनका इस प्रकार का फूड था, आगे भी वर्णन आता है कि एक छोटा सा घड़ा उनको दिया था मिल्क का पीने के लिए, उन्होंने पी लिया और फिर अपने शिष्य को दिया, उसने भी पी लिया, ऐसे कम से कम 300-400 लोगों ने वो एक घड़ा पी लिया मिल्क का, तभी भी उसमें से मिल्क खत्म नहीं हो रहा था। हाँ, तो ऐसी कई छोटी छोटी घटना मध्वाचार्य के जीवन में है। और जैसे कि शंकराचार्य आए जिन्होंने शून्य से एक स्थापित किया था, है ना, उस दिन कह रहे थे लेक्चर में, और फिर मध्वाचार्य ने दो, है ना, द्वैतवाद का प्रचार किया। ये शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, अद्वैतवाद मतलब सब कुछ एक है, और मध्वाचार्य जब बैठते हैं तो अपना हाथ ऐसा करके बैठते हैं, वो आसन में जो बैठते हैं ना ऐसा, मतलब हम एक नहीं है, हाँ दो है, अलग अलग, भगवान अलग है और जीव अलग है। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य का जो सिद्धांत है ये द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद इसको कहते हैं, द्वैताद्वैतवाद मतलब जीव अलग है और जो भगवान अलग है, ये इस सिद्धांत की जो स्थापना है वो मध्वाचार्य करते हैं। और फिर हम कल चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मध्वाचार्य हिमालय में आए थे व्यासदेव से शिक्षा लेने के लिए, और फिर हिमालय में उन्होंने व्यासदेव से शिक्षा ली और उसके बाद किस प्रकार उनको उडुपी कृष्ण प्राप्त हुए हैं, ये सब चर्चा हम कल कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
जब
व्यास जी ने भागवत लिखी थी,
भागवत 5,000 साल
पहले। व्यास जी अभी भी हैं। उनका उस स्थान का नाम होता है शम्याप्रास। भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आप पढ़ोगे शम्याप्रास, जो ऑर्डिनरी व्यक्ति के इससे दूर है विजन से, हिमालय से आगे कहाँ है वो स्थान, मतलब नॉर्मल पर्सनैलिटी वह ट्रैवल नहीं कर सकता। वो अलग ही एक लोक है जहाँ हिमालय से ऊपर, जहाँ एक स्थान है जहाँ बिल्कुल सारे पेड़ पौधे पंछी सरोवर और इंटेलिजेंट सारे ऋषि मुनि रहते हैं, वहाँ व्यासदेव उन ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं। हाँ अभी भी, और मध्वाचार्य चले गए, वो सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते। मध्वाचार्य तो लुप्त हो जाते हैं, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, अप्रकट हो गए मध्वाचार्य, उनका बॉडी कहा कौन से डिवोटीज ही जा सकते हैं,
फिजिकली पहुंच नहीं सकते,
फिजिकली नहीं जा सकते।
नहीं वैसे जैसे वो सोल से चले बॉडी से कुछ चला जाता है, बॉडी में आता है कोई भी ऐसे होता है ना बाहर चले जाता
है, हो सकता है, लेकिन उस व्यासदेव के अपना एरिया है वो, नॉर्मल लोगों को वो अलाउ नहीं करेंगे। मध्वाचार्य डिवोटीज है, बल्कि उनके शिष्य भी उनके साथ जा रहे थे।